एकत्रा ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी के इस अंक में सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक कह सकते हैं थोड़ी मुश्किल लेकिन बेहद दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, जॉर्ज बटाई की साहित्य और अनिष्ट, लिटरेचर एंड ईविल। मैं हूं आपका पहला साथी
और मैं हूं आपकी दूसरी हमसफर। और आपने सही कहा, ये किताब थोड़ी चुनौती देती है पर जरूरी भी है। हमारी ये जो बातचीत है, ये दो समरीज पर आधारित हैं जो इस किताब का सार पेश करती हैं, तो हम उन्हीं के आधार पर बटाई के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल, पर एक सवाल शायद सबके मन में आए कि ये किताब आज भी रेलेवेंट क्यों है। मतलब साहित्य तो हम अक्सर मनोरंजन के लिए या कुछ सीखने के लिए पढ़ते हैं। सही सवाल है। देखिए, ये इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि ये हमें साहित्य को सिर्फ अच्छे या बुरे के चश्मे से देखने से आगे ले जाती है। ये पूछती है कि जब साहित्य उन चीज़ों को दिखाता है जो समाज को पसंद नहीं, जैसे हिंसा या वर्जित इच्छाएं, तो उसका असली मकसद क्या है? क्या वो सिर्फ चौंका रहा है या कुछ गहरा बता रहा है?
अच्छा, तो ये हमारे सोचने के तरीकों को चैलेंज करती है।
हाँ बिल्कुल।
तो ठीक है, करते हैं इस चैलेंज का सामना। पहले लेखक को ही जान लेते हैं। जॉर्ज बटाई कौन थे ये?
जॉर्ज बटाई एक फ्रांसीसी विचारक थे, 1897 से 1962 तक। और वो सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, वो समाजशास्त्री, नॉवेलिस्ट, लिटरेरी थियोरिस्ट, कई कुछ थे। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या?
क्या?
उन्होंने ट्रेनिंग ली थी एक लाइब्रेरियन और आर्काइविस्ट के तौर पर।
अरे वाह, लाइब्रेरियन से इतने रेडिकल विचार, ये तो कमाल है। किन लोगों का असर था इन पर?
असर तो कई बड़े नामों का था, हेगेल, नीचे, फ्रॉयड, दुर्खीम, लेकिन बटाई का जो फोकस था वो थोड़ा अलग था। वो उस चीज पर ध्यान देते थे जिसे वो हेट्रोजेनियस कहते थे, मतलब
विषम।
विषम
यानी?
यानी वो सब कुछ जो समाज के तर्क संगत, उत्पादक, काम वाले हिस्से से बाहर रखा गया है, जैसे बहुत ज्यादा भावनाएं, पवित्र अनुभव, बर्बादी, मौत, सेक्सुअलिटी, वो सब।
अच्छा,
और यही चीज शायद उनके नजरिए को यूनिक बनाती है कि वो सिर्फ थ्योरी नहीं दे रहे थे।
बिल्कुल,
उनका कनेक्शन सिर्फ किताबी नहीं था, वो इन वर्जित विषयों, पवित्रता और अति मतलब एक्सेस के साथ पर्सनली जुड़े हुए थे, गहराई से। वो इन ताकतों को सिर्फ समझना नहीं बल्कि महसूस करना चाहते थे, और इसीलिए साहित्य पर उनका नजरिया इतना इतना उत्तेजक है। वो सिर्फ टेक्स्ट का एनालिसिस नहीं करते, वो दिखाते हैं कि साहित्य कैसे मानव अस्तित्व के उन बुनियादी अक्सर हिंसक पहलुओं से जुड़ा हुआ है।
समझ गया। तो अब आते हैं किताब पर, साहित्य और अनिष्ट। इसका मतलब कोर आइडिया क्या है, और अनिष्ट या बुराई से बटाई का क्या मतलब है यहाँ?
देखिए, बटाई का मेन तर्क ये है कि जो सच्चा गहरा साहित्य है वो कहीं ना कहीं अनिष्ट या बुराई की खोज से जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ बुराई का मतलब वो पाप पुण्य वाला बुराई नहीं है।
अच्छा, तो फिर क्या है?
बटाई के लिए बुराई का मतलब है नियमों को जानबूझकर तोड़ना, सामाजिक बंधनों को तोड़ना, जो यूटिलिटी है, फायदा है, उस लॉजिक को नकारना।
ओके, तो ये मोरालिटी से ज्यादा रूल ब्रेकिंग के बारे में?
हाँ कह सकते हैं। बटाई कहते हैं कि हमारा समाज स्थिरता के लिए नियमों पर, टैबूज पर टिका है। हिंसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये नियम जरूरी हैं, पर ये साथ ही उन वर्जित चीजों के लिए गहरी इच्छा भी पैदा करते हैं। एक ऐसी स्थिति की इच्छा जो नियमों से, काम से, फायदे से परे हो, पूरी तरह आजाद, उसे बटाई संप्रभुत्व कहते हैं, सॉवरेनिटी।
और साहित्य, उसका क्या रोल है इसमें?
साहित्य वो एक तरह की सेफ जगह है जहां हम इन नियमों को तोड़ सकते हैं, उन वर्जित चीजों का सामना कर सकते हैं बिना असल दुनिया में उसका नतीजा भुगते।
अच्छा,
ये हमें उस संप्रभुता की एक झलक दिखाता है। तो ये किताब सिर्फ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नहीं है, ये फिलॉसफी है, साहित्य की ताकत की पड़ताल।
ठीक है, तो बटाई ने अपने इस आइडिया को समझाने के लिए कुछ लेखकों के उदाहरण भी दिए होंगे।
हाँ, 8 लेखकों का विश्लेषण किया है उन्होंने।
8? सारे तो शायद मुमकिन ना हो, पर कुछ खास उदाहरण देखते हैं। किससे शुरू करें?
एमिली ब्रोंटे से करते हैं, उनका नॉवल विदरिंग हाइट्स।
हाँ, मशहूर है।
बटाई इसे संप्रभु जुनून का परफेक्ट उदाहरण मानते हैं। सोचिए, कैथरीन और हीथक्लिफ का प्यार, वो समाज, नैतिकता, किसी चीज की परवाह करता है?
नहीं,
नहीं, वो एक प्राकृतिक आपदा जैसा है, डिस्ट्रक्टिव पर जबरदस्त।
हाँ, और कैथरीन का वो कहना, मैं हिथक्लिफ हूं, ये तो जैसे खुद को मिटा देना है।
बिल्कुल, ये जुनून किसी फायदे के लिए नहीं है, ये बस अपनी इंटेंसिटी के लिए है, और ये आखिर में मौत की तरफ ले जाता है। मौत को बुटाई अंतिम संप्रभु क्षण मानते हैं, जहां इंसान दुनिया के हर बंधन से, हर नियम से पूरी तरह आजाद हो जाता है। ये रोजमर्रा की दुनिया के एकदम उलट है।
तो ब्रॉन्टे हुनी जुनून की संप्रभुता, फिर चार्ल्स बॉडलेयर, उनका मामला तो थोड़ा अलग लगता है, बुटाई उन्हें कैसे लिखते हैं?
बॉडलेयर के लिए बुटाई, कहती है, बुराई एक सोचा समझा चुनाव था, उनकी कला का, उनकी रूहानी खोज का रास्ता। उनकी किताब का नाम ही है ले फ्लोर दी माल, बुराई के फूल, नाम ही काफी है।
हाँ।
वो क्या कर रहे थे? वो बदसूरती, पाप, सड़न जैसी चीजों से सुंदरता निकालने की कोशिश कर रहे थे, सिस्टमैटिकली।
पर क्यों, मतलब ऐसा क्यों?
तर्क वाली, इसने पवित्रता के गहरे अनुभव को दबा दिया है, खत्म कर दिया है। तो अब अगर उस इंटेंसिटी तक पहुंचना है तो नैतिकता के नियमों को जानबूझकर तोड़ना ही पड़ेगा। उनकी बुराई एक तरह से उस खोई हुई पवित्रता को खोजने की कोशिश थी।
वाह, ये तो बहुत गहरा नजरिया है। अच्छा, अब एक बिल्कुल अलग सा उदाहरण लेते हैं, मार्कुस डी साद। इनका नाम सुनते ही थोड़ा यू नो अजीब लगता है, बताएं इनके बारे में क्या कहते हैं, ये थोड़ा समझाना शायद मुश्किल हो।
हाँ, साद का मामला सबसे ज्यादा एक्सट्रीम है और प्रॉब्लमैटिक भी। जहां दूसरे लेखक नियम तोड़ने, मतलब ट्रांसग्रेशन को एक्सप्लोर करते, साद उसे एक पूरी फिलोसॉफिकल सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। बटाई इसे इंटीग्रल मॉन्स्ट्रोसिटी कहते हैं, अभिन्न राक्षसीपन।
बाप रे।
साद का लॉजिक क्या है कि अगर व्यक्ति की अपनी आजादी और उसका सुख ही अल्टीमेट वैल्यू है, तो फिर दुनिया की हर चीज, दूसरे इंसान भी, बस उसकी मर्जी पूरी करने का एक साधन बन जाते हैं।
ये तो बहुत ही भयानक सोच है, क्या बटाई से एंडोर्स करते हैं?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये साफ करना बहुत जरूरी है, बटाई सैद के कामों या विचारों का समर्थन नहीं करती। वो सैद के लेखन का विश्लेषण एक भयानक लेकिन जरूरी थॉट एक्सपेरिमेंट के तौर पर करती हैं। सैद ये दिखाते हैं कि व्यक्तिगत संप्रभुता का सिद्धांत अगर अपनी चरम सीमा तक जाए तो वो कहां तक जा सकता है। दूसरों के दुख दर्द के प्रति पूरी उदासीनता, क्रूरता को भी जस्टिफाई करने तक। सैद उल्लंघन और संप्रभुता की सबसे अंधेरी, सबसे असहनीय तस्वीर है।
ये समझना जरूरी था कि ये विश्लेषण है, वकालत नहीं। अच्छा, आखिर में जीन जेनेट की बात करते हैं, बटाई उन्हें इस पूरी बहस का मतलब मॉडर्न पीक क्यों मानते हैं?
जेनेट की जिंदगी ही देखिए, वो एक अनाथ, चोर, कैदी। उन्होंने सिर्फ बुलाई के बारे में लिखा नहीं, उन्होंने उसे जिया। उन्होंने जानबूझकर समाज से बाहर की, एक आउटकास्ट की पहचान अपनाई, और फिर अपने लेखन के जरिए अपनी उस गिरी हुई जिंदगी को पोएट्री और स्पिरिचुअल ग्रेस का सोर्स बना दिया।
मतलब उन्होंने अपनी बुराई को ही अपनी ताकत बना लिया एक तरह से।
हाँ, कह सकते हैं। उन्होंने विश्वासघात, चोरी, पतन, इन चीजों पर आधारित एक अजीब तरह का संतपन हासिल किया, सैंक्लीनेस। जानबूझकर बुराई चुनकर और उसे कला में बदलकर जेनेट ने बटाई के अनुसार पूरी संप्रभुता हासिल की। उनका काम सिर्फ क्रिमिनल वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो एक तरह का सैक्रेड टेक्स्ट बन जाता है जो उसी दुनिया को ग्लोरीफाई करता है। ये दिखाता है कि कैसे सबसे गिरी हुई चीजों में भी एक अलग तरह की पवित्रता ढूंढी जा सकती है।
ये उदाहरण तो वाकई बटाई के विचारों की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाते हैं। तो इन सब विश्लेषणों से कुछ मेन थीम्स क्या निकलती हैं? पहला तो शायद वही उल्लंघन और निषेध वाला है ना?
हाँ हाँ, बिल्कुल। पहला और सबसे जरूरी है उल्लंघन और निषेध, ट्रांसग्रेशन एंड द टबू। बटाई का ये विचार बहुत रेडिकल है कि नियम सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं होते, बल्कि नियम का होना ही उसे तोड़ने की इच्छा को जगाता है
और तेज करता है।
वो जो उल्लंघन का क्षण है, वो बहुत गहरा, इंटेंस अनुभव होता है, और साहित्य इसी मनोवैज्ञानिक खिंचाव को एक्सप्लोर करने की जगह है।
और दूसरा जो बार बार आया, संप्रभुता, सॉवरेनिटी, ये थोड़ा और समझाएंगे, ये सिर्फ पॉलिटिकल आजादी नहीं है जैसा आपने कहा?
नहीं, उससे बहुत ज्यादा। ये जीने की या होने की एक ऐसी अवस्था है जो अपने आप में एक अंत है, जिसका कोई भारी मकसद नहीं, कोई यूटिलिटी नहीं। सोचिए, बेसाख्ता हंसी या फूट फूट कर रोना, या गहरी कलात्मक क्रिएशन का वो पल, इंटेंस प्रेम या कामों का आनंद, यहाँ तक कि एक्सट्रीम हिंसा या बलिदान का एक्ट भी, ये सब संप्रभु क्षण हो सकते हैं। यह हमें रोजमर्रा की कामचलाओ जिंदगी से बाहर ले जाते हैं, साहित्य हमें इन दुर्लभ क्षणों का अनुभव कराता है।
तीसरा, आपने बताया था पवित्रता के दो पहलू, द टू साइडेड सेक्रेड।
ये थोड़ा और बताइए, पवित्रता तो हम आमतौर पर अच्छी शुद्ध चीजों से जोड़ते हैं।
हाँ, हम सोचते हैं देवता, मंदिर, पूजा, ये पवित्रता का एक पहलू है, शुद्ध वाला। लेकिन बटाई कहती हैं कि इसका एक दूसरा अंधेरा अशुद्ध पहलू भी है, जैसे लाश, मिंस्ट्रल ब्लड, गंदगी, अपराध, राक्षस। ये जो अशुद्ध पवित्र है, ये भी उतना ही पावरफुल और आकर्षक होता है।
अच्छा।
और बटाई जिस साहित्य की बात कर रही हैं, वो अक्सर इसी अंधेरे, वर्जित, उल्लंघनकारी पवित्रता की तरफ खींचता है, उसमें जबरदस्त ऊर्जा पाता है।
ये तो बिल्कुल अलग तरीका है पवित्रता को देखने का।
और चौथा, क्या बुराई से कुछ सीखने को भी मिल सकता है, मतलब ज्ञान?
बटाई के हिसाब से हाँ, चौथा थीम यही है, बुराई ज्ञान और संचार के मार्ग के रूप में, Evil as the path to knowledge and communication. उनका मानना है कि अगर हम खुद को सिर्फ अच्छाई, तर्क, नैतिकता, समाज तक लिमिट कर देंगे, तो हम असलियत का एक बड़ा हिस्सा देखने से चूक जाएंगे। साहित्य के जरिए बुराई की खोज हमें इंसान के स्वभाव की उन आदिम, अतार्किक, अक्सर हिंसक गहराइयों को दिखाती है जिन्हें हम अनदेखा करना पसंद करते हैं। ये एक जरूरी ज्ञान है।
और संचार वाला पहलू?
हाँ, वो भी। जब हम किसी कहानी से डरते हैं या रोते हैं या बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं, तो हम लेखक के साथ सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि गहरा, संप्रभु, भावनात्मक अनुभव शेयर कर रहे होते हैं। ये भी एक तरह का डीप कम्युनिकेशन है।
इन विचारों को अगर हम अपने आसपास देखें, जैसे भारत में, तो क्या कुछ दिखता है? जैसे आपने कहा फिल्मों में एंटी हीरो का क्रेज या ग्रे शेड वाले किरदार।
हाँ बिल्कुल, ये एक अच्छा उदाहरण है। क्यों हम ऐसे किरदारों से कनेक्ट करते हैं जो नियम तोड़ते हैं? शायद उनमें हमें उस उल्लंघन की झलक मिलती है जिसकी बात बटई करती हैं। या हमारे त्योहारों को देखिए, होली जैसा त्योहार जहाँ कुछ टाइम के लिए सामाजिक नियम ढीले पड़ जाते हैं, लोग ज्यादा खुलकर एक्सप्रेस करते हैं।
हाँ सही है।
क्या ये एक तरह का सामूहिक संप्रभु व्यय है जहाँ हम रोजमर्रा की यूटिलिटी से परे जाकर एनर्जी खर्च करते हैं? ये सब सोचने वाली बातें हैं।
जरूर, किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां भी होंगी जो इन आइडियाज को सीधे पकड़ती हों, कुछ कोड्स जिन पर बात कर सकें।
हाँ है ना, एक तो बहुत सीधी है, साहित्य या तो अनिवार्य है या कुछ भी नहीं। मतलब साफ है, बटाई साहित्य के किसी भी यूटिलिटेरियन व्यू को रिजेक्ट करती है। अगर साहित्य जिंदगी के बुनियादी मुश्किल सवालों से नहीं जूझता, उस अनिवार्य गहराई तक नहीं जाता, तो वो बस टाइम पास है। उसकी असली ताकत उसकी संप्रभुता में है।
और दूसरी, वो जो बुराई और संप्रभु मूल्य वाली बात थी, बुराई जिसे साहित्य व्यक्त करता है, हमारे लिए उसकी निंदा के अनुपात में ही संप्रभु मूल्य रखती है।
Evil which literature expresses has for us the sovereign value. ये थोड़ा मुश्किल है।
हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी है। इसका मतलब है कि समाज जिन चीजों को बुरा कहकर दबाता है या कंडेम करता है, ठीक उसी वजह से उनमें एक खास तरह का अट्रैक्शन पैदा हो जाता है।
टैबू ही उल्लंघन को वैल्यूबल और आकर्षक बनाता है, और साहित्य इसी डायनामिक का इस्तेमाल करता है। वो हमें उस वर्जित जोन का अनुभव कराता है, और यही अनुभव संप्रभु है, यानी अपने आप में कीमती।
अच्छा, आप समझा। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा सोचने वाला है, साहित्य का सत्य बुराई का सत्य है, लेकिन ये सत्य जीने योग्य नहीं है।
द ट्रूथ ऑफ लिटरेचर इज द ट्रूथ ऑफ ईविल, बट दिस ट्रूथ इज अनलिवेबल। इसका क्या मतलब है? ये लिटरेचर और रियल लाइफ के फर्क को हाईलाइट करता है। साहित्य हमें इंसान के एक्सपीरियंस की सबसे अंधेरी गहराइयों तक ले जा सकता है, जैसे हमने साध के उदाहरण में देखा। वो हमें हमारी पूरी आज़ादी और क्रूरता की क्षमता का एक सच दिखा सकता है। लेकिन बटाई ये भी मानती है कि ये सच जीने लायक नहीं है। अगर हम रियल लाइफ में साध के प्रिंसिपल्स पर चलने लगे तो समाज तो बचेगा ही नहीं।
हाँ, वो तो है।
इसीलिए साहित्य इतना जरूरी है। ये उन खतरनाक सचों का सामना करने के लिए एक कंट्रोल्ड जरूरी स्पेस देता है।
ये बातें तो वाकई हमें आर्ट, लिटरेचर, किरदारों को देखने का हमारा नजरिया बदलने पर मजबूर करती हैं। सिर्फ अच्छा या बुरा का लेबल काफी नहीं है।
बिल्कुल। अब बड़ा सवाल, ये सब थ्योरी, ये जटिल बातें हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे काम आ सकती हैं? क्या फायदा इनका?
फिल्में इतनी क्यों पॉपुलर हैं? बड़ाई का नजरिया शायद ये कहता है कि ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये हमें दूसरों के जरिए वाइकेरियसली नियम तोड़ने का अनुभव देते हैं।
हम अपने डरों और दबी हुई इच्छाओं का सामना एक सेफ तरीके से कर पाते हैं।
बिल्कुल।
दूसरा, ये हमारी अपनी साइकोलॉजी को समझने में मदद कर सकता है। हम सबके अंदर एक शैडो सेल्फ होता है, एक अंधेरा हिस्सा। बटाई का नजरिया हमें सिखाता है कि अपने बुरे विचारों या इच्छाओं को सिर्फ दबाने के बजाय उन्हें स्वीकारना और समझना जरूरी है। शायद कभी कभी बस खेलना या कुछ ऐसा करना जिसका कोई प्रोडक्टिव मकसद ना हो, वो भी जरूरी है। एक तरह का संप्रभु व्यय।
और इसे समाज को समझने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
हाँ, जब समाज किसी चीज को बुरा या बेकार कहता है तो हमें सवाल पूछना चाहिए, क्यों? ये नियम किसके फायदे के लिए हैं? ये इंसान के अनुभव के किन हिस्सों को दबा रहे हैं?
और आखिर में शायद ये हमें मुश्किल आर्ट को अप्रिशिएट करने में मदद करता है, जो चौंकाता है या जिसमें नैतिकता साफ नहीं है।
एग्जैक्टली। ऐसी कला का मूल्य सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, उसका मूल्य है हमारी सोच की सीमाओं को धकेलना, हमें असहज करना और हमें जिंदगी के उन पहलुओं से मिलाना जिन्हें हम अक्सर देखना नहीं चाहते। सवाल ये नहीं कि क्या ये कला अच्छी है, बल्कि ये कि ये कला हमें क्या सिखा रही है, कौन सा अनदेखा सच दिखा रही है।
तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख ये है कि साहित्य कोई सीधी सादी आरामदायक चीज नहीं है। ये इंसान होने के पूरे अनुभव की, खासकर उसके अंधेरे कोनों की, एक जोखिम भरी लेकिन जरूरी खोज है। कला को देखने का ये एक नया नजरिया है।
और मेरे लिए सबसे स्ट्राइकिंग बात शायद ये है कि अच्छाई और बुराई कितने रिलेटिव हो सकते हैं। जिन्हें हम बुराई समझकर दबाते हैं, शायद उन्हीं में हमारी आजादी और इंटेंसिटी पाने की इच्छा छिपी हो। शायद नियम तोड़ने का जो रोमांच है, वो हमें अपनी लिमिट्स का एहसास कराता है, कम से कम कल्पना में।
और अब सुनने वालों के लिए एक सवाल। बटाई के संप्रभुता और उल्लंघन के इस नजरिए से अपने जीवन या अपने पसंदीदा साहित्य, सिनेमा या संगीत के किन पहलुओं को आप एक नई रोशनी में देख सकते हैं? सोचिएगा जरूर। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।